पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश दिशा को प्रपोज करता है, लेकिन दिशा शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद देवांश उसे धमकी देता है। दूसरी ओर रुद्र रूही से नाराज है क्योंकि वो ऑफिस नहीं आई थी और उसे सजा देने की बात करता है। अब रूही और रुद्र के बीच बातचीत होती है, जिसमें रुद्र रूही को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है। रूही ऐसा करती है, लेकिन रुद्र उसे किस करने के लिए कहता है। दूसरी ओर देवांश खुश दिखता है और कामना को बताता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन रुद्र उसे किस करने के लिए कहता है। दूसरी ओर देवांश खुश दिखता है और कामना को बताता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 156। अब आगे सिंघानिया विला। डाइनिंग टेबल। रुद्र रूही और देवांश के अलावा सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी देवांश भी फ्रेश होकर आ जाता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देख कामना देवांश को अपने हाथों से खाना परोसते हुए बोली, देख बेटा, आज मैंने तेरे पसंद का खाना बनवाया है। आज तूने इतनी बड़ी डील हासिल की है, इसीलिए मैंने तेरी फेवरेट खीर भी बनवाई है। इतना बोल कामना खीर निकालकर भी देवांश को दे देती है, जिसे देख देवांश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मॉम, मेरा सच में आज खीर खाने का बहुत मन था। देवांश की बात सुनकर कामना मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, अब तू अच्छे से खा। इतना बोल वे खुद भी खाने लगती है और देवांश भी आज आराम से खाना खाते हुए खाने को एंजॉय कर रहा था। वही अर्जुन देवांश को देखते हुए बोला, भाई, आज आपकी जब इतनी बड़ी डील साइन हुई है तो आप हमें पार्टी तो दोगे ना? ये बात अर्जुन ने थोड़ा डरते हुए कही थी। वहीं अर्जुन की बात सुनकर देवांश खाना खाते हुए बोला, ठीक है, कल मेरा क्रेडिट कार्ड ले लेना और तुम्हें जो शॉपिंग करनी होगी वे कर लेना। देवांश की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में जैसे चमक ही आ जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी जल्दी मान गया। वहीं परी भी देवांश को इतनी जल्दी अर्जुन की बात मानता देख हैरान थी, इसलिए वे भी इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वे भी देवांश को देख तुरंत बोली, भाई, मुझे भी पार्टी चाहिए। परी की बात सुनकर देवांश बोला, ठीक है, तुम भी अर्जुन के साथ शॉपिंग कर लेना। देवांश की बात सुनकर परी भी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। सबको खुश देखकर सभी अपना खाना आराम से खाने लगते हैं। तभी रघुवीर जी देवांश की तरफ देखते हुए मिस्टीरियस वे में बोले, देवांश बेटा, आज तू जिस डील को हासिल करके आया है, उस डील का अच्छे से ध्यान रखना। अगर उस डील को तेरी वजह से कोई तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। रघुवीर जी की बात जैसे ही देवांश के कानों तक पहुंचती है, अचानक ही उसे ऐसा लगता है कि खाना उसके गले में अटक गया है और वे जोर जोर से खांसने लगता है। वहीं देवांश को यूं अचानक खांसते हुए देख सुमन उसे तुरंत पानी देते हुए बोली, देवांश, ये लो पानी पी लो। पानी देख देवांश तुरंत सुमन के हाथ से पानी ले लेता है और एक ही सांस में उस पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद जब वे शांत होता है तो अपनी नजरें उठावे तुरंत रघुवीर जी की तरफ देखने लगता है। वे रघुवीर जी देवांश को खुद की तरफ देखता हुआ पा हल्का मुस्कुरा देते हैं और फिर से खाना खाने लगते हैं। वहीं रघुवीर जी की मुस्कुराहट देख देवांश को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि रघुवीर जी को सब कुछ पता है कि वे आज कहाँ और किसके साथ था और क्या कर रहा था, जिसे समझ वे भी कुछ नहीं कहता और अपना खाना फिनिश कर तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। बाकी सब भी डिनर कर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सुमन एक सर्वेंट को बोल रुद्र और रूही का खाना रूम में ही भिजवा देती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में, रुद्र जैसे ही अपने सीने की तरफ पॉइंट करते हुए रूही को वहां पर किस करने को बोलता है, वैसे ही रूही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रुद्र को देखते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको कोई किस नहीं करूंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे भूख लगी है। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही के गालों पर हाथ रख रूही के होठों को सहलाते हुए बोला, रूह, भूख तो मुझे भी लगी है और वे भी तुम्हारी इन रसीले होठों की। रूह, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी भूख तुम्हारे इन रसीले होठों से बुझाऊं तो जल्दी से मैंने जहां बोला है वहां किस करो, वरना मैं अगर तुम्हारे इन होठों को खाने पर आ गया तो तुम्हें एक घंटे के पहले नहीं छोड़ने वाला। रुद्र की बातें सुनकर रूही अपना थूक निगल लेती है। वे तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अगर रुद्र उसे एक घंटे किस करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, कहीं वे भगवान के पास ही न चली जाए। इस बात को सोचकर ही रूही जोर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी जीना है। इतना बोल भी रुद्र को देखते हुए बोली, ठीक है, मैं करती हूँ किस, लेकिन उसके बाद आप मुझे जाने देंगे? रूही को यूं डरता हुआ देख रुद्र मन ही मन मुस्कुराता है और रूही को देख बोला, रूह, वे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुमने मुझे अच्छे से किस किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर रूही अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहती है, रूही तू कर सकती है, अगर तूने इस शैतान को किस नहीं किया तो ये तुझे छोड़ेगा नहीं। वैसे भी इस शैतान ने मुझे कितनी बार किस किया है, मैं भी इसे कर सकती हूँ, वैसे भी ये मेरा पति है, भले ही उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और मैं अभी तक इसे पति के रूप में अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे मानने या ना मानने से ये सच तो नहीं बदल सकता कि अब यही मेरा पति है और मुझे इसी शैतान के साथ रहना है, इसीलिए किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ। रूही, यू डू इट। इतना बोल वे खुद को ही हौसला देती है और डरते हुए अपने कांपते हाथ रुद्र के कंधे पर रखती है। उसके बाद अपनी आंखें बंद किए हुए ही रुद्र के सीने की तरफ छुपने लगती है, फिर अपने कांपते होंठ रुद्र के सीने पर रख देती है। वहीं रुद्र जैसे ही अपने सीने पर अपनी रूह के होंठ महसूस करता है, वैसे ही उसकी सांसें अचानक तेज हो जाती हैं और वे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। आज उसे एक अलग का एहसास हो रहा था जो उसे कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा वही रूह को किस करता था, लेकिन आज रूही का उसे खुद से किस करना उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग डेवलप कर रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जो आज के पहले कभी भी नहीं हुआ। उसे अपने दिल में काफी सुकून महसूस हो रहा था। वहीं रूही रुद्र के सीने पर हल्के से होठ रख तुरंत उसे दूर हो जाती है और रुद्र को देखते हुए कहती है, हो गया, अब मैं जाऊं।
इतना बोल वे जाने लगती है। वहीं रूही के दूर होते ही रुद्र तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अपनी गहरी नजरों से रूही को देखने लगता है।